लूका अध्याय 7। लोगों से ये सब बातें कहने के बाद यीशु कफरनहूम लौटे। उसी समय एक बड़े इज्जतदार रोमन अफसर का एक नौकर बीमारी की वजह से मरने पर था। यीशु के बारे में सुनने पर उसने कुछ यहूदी बुजुर्ग लोगों को भेजकर उन्हें बुलाया ताकि वे आकर उसके दास को स्वस्थ कर दें। यीशु के पास आने पर उन्होंने कहा कि
रोमन ऑफिसर इस लायक है कि उसके लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि वो यहूदियों को चाहता है और उसी ने आराधनालय को हमारे लिए बनाया है।
तब यीशु उन लोगों के साथ चल दिए। जब यीशु घर से बहुत दूर नहीं थे, तभी रोमी ऑफिसर ने अपने कुछ दोस्तों के द्वारा कहलाया कि यीशु उसके घर आने का कष्ट ना करें, क्योंकि वह स्वयं इस लायक नहीं है। उसने कहा,
इसी वजह से मैं आपके पास आने से हिचकिचा रहा था, इसलिए कि मेरे पास भी अधिकार है और सैनिक मेरे अधीन है। मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूँ आओ तो वो आ जाता है, ये करो तो वो करता है।
यह सुनकर यीशु को उस व्यक्ति पर आश्चर्य हुआ और अपने साथ चलने वाली भीड़ की तरफ मुड़कर कहा,
सच ये है कि इसराइलियों में भी मैंने ऐसे विश्वास को नहीं पाया है।
भेजे हुए लोग घर लौटे तो उन्होंने नौकर को बिल्कुल ठीक पाया। दूसरे दिन भीड़, यीशु मसीह के तमाम शिष्य और वह नाइन नामक गांव पहुंचे। गांव के मुहाने पर पहुंचते ही एक नवजवान की अर्थी को देखा गया। वह अपनी विधवा माँ का इकलौता बेटा था और उस गांव का एक बड़ा झुंड अर्थी के साथ था। उस महिला को देखते ही यीशु को तरस आया और उन्होंने कहा,
रो मत।
पास आकर यीशु ने अर्थी को छू लिया और उसे उठाने वाले तुरंत वहीं ठहर गए। वह बोले,
हे नवजवान, उठकर बैठो।
वह मुर्दा नवजवान उठ बैठा और बातें करने लगा। यीशु ने उसे उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया। हर एक के ऊपर डर सा छा गया और सभी परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहने लगे कि
हमारे बीच में एक बड़ा नबी उठ खड़ा हुआ है और परमेश्वर हमसे भेंट करने उतर आए हैं।
सारे यहूदिया और आसपास के सभी इलाके में यह बात फैल गई। इन बातों की सूचना यूहन्ना के शिष्यों ने यूहन्ना को दी। अपने शिष्यों में से दो को बुलाकर यूहन्ना ने यीशु के पास यह पूछवाने के लिए भेजा कि जो आने वाले थे वह आप ही हैं या हम किसी और का इंतजार करें। वह दोनों आकर यीशु से पूछने लगे,
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें आपके पास ये पूछने के लिए भेजा है कि जो आने वाले थे वो आप ही हैं या हम किसी और का इंतजार करें।
तभी यीशु मसीह ने अनेकों बीमारियों, कष्टों और प्रेत आत्माओं से पीड़ित लोगों को आजाद करने के साथ अंधों को रोशनी दी। उनका उत्तर देते हुए यीशु ने कहा,
जो कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, वो सब जाकर यूहन्ना को बता दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चल रहे हैं और जरूरतमंद और असहाय लोगों को खुशी की खबर सुनाई जा रही है, और फायदे में वही है जो मेरी वजह से दुविधा में नहीं पड़ेगा।
जब वे संदेशवाहक वापस लौट गए तो वह लोगों से यूहन्ना के बारे में कहने लगे,
तुम लोग जंगल में क्या देखने गए थे, हवा से हिलते हुए सरकंडे को? लेकिन तुम देखने क्या गए थे, कीमती कपड़े पहने हुए व्यक्ति को? देखो, जो कीमती कपड़े पहनते हैं वे राजमहल में रहा करते हैं, लेकिन वहां देखने क्या गए थे, एक नबी? हाँ, एक नबी से भी बड़े व्यक्ति को। इसी के बारे में लिखा है, देखो मैं तुम्हारे सामने एक खबर देने वाले को भेज रहा हूँ जो तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे आने की तैयारी करेगा। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आज तक जो भी लोग पैदा हुए उनमें से यूहन्ना से बढ़कर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के राज्य में जिसको सबसे कम समझा जाता है वो यूहन्ना से भी बड़ा है।
जब सभी लोगों ने यह सब सुना तो टैक्स इकट्ठा करने वालों ने भी हामी भरते हुए कहा कि परमेश्वर का रास्ता ही सही है, क्योंकि यूहन्ना उन्हें बपतिस्मा दे चुका था। लेकिन फरीसियों और धर्मशास्त्रियों ने परमेश्वर के रास्ते को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना के बपतिस्मे का इनकार किया। यीशु ने कहा,
मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किस तरह के लोग हैं, ये मैं कैसे बताऊं? वे उन बच्चों के समान हैं जो चौराहे में खेलते हुए अपने दोस्तों से शिकायत करते हैं, हमने तुम्हारे लिए शादी में बजने वाली धुन बजाई, लेकिन तुमने नाच नहीं दिखाया, इसलिए हमने वो राग अलापी जो अंत्येष्टि के समय की है, तब भी तुम रोए नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाया करता था, ना अंगूर का रस पीता था, लेकिन तुम उसे दुष्टात्मा वाला व्यक्ति कहते थे। दूसरी तरफ मनुष्य का पुत्र खाना खाता है और अंगूर का रस पीता है, और तुम्हारी नजर में वो पेटू, प्यक्कड़, टैक्स इकट्ठा करने वालों और दुष्टों का दोस्त है। लेकिन ज्ञान को वही लोग परख सकते हैं जो सचमुच ज्ञानी हैं।
इनमें से एक फरीसी बार बार यीशु को अपने घर बुला रहा था, इसलिए यीशु उसके घर खाने पर गए। उसी गांव में एक बुरे चाल चलन वाली स्त्री रहा करती थी। फरीसी के घर में यीशु की दावत की खबर सुनकर वह एक इत्र की बोतल लेकर वहां आई। वह यीशु के पास पीछे खड़ी रोते रोते उनके पांव को आंसुओं से भिगोते हुए अपने बालों से पोंछने लगी। उसने उनके पांव को बार बार चूमा और इत्र मला। वह फरीसी मन ही मन सोचने लगा,
अगर यीशु एक नबी होते तो जान जाते कि उन्हें छूने वाली इस स्त्री का चाल चलन अच्छा नहीं है।
यीशु ने उससे कहा,
शिमोन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
शिमोन ने कहा,
गुरु जी कहिए।
एक महाजन के दो कर्जदार थे, एक के ऊपर 500 चांदी के सिक्के और दूसरे के ऊपर 50 चांदी के सिक्कों का कर्ज था। जब वे कर्ज लौटा न सके तो उसने उन दोनों को माफ कर दिया। मुझे बताओ, कौन उससे ज्यादा प्रेम करेगा?
शिमोन ने कहा,
मैं सोचता हूँ जिसका ज्यादा माफ किया गया।
यीशु ने कहा,
तुम बिल्कुल सच कह रहे हो।
उस स्त्री की तरफ मुड़कर यीशु ने शिमोन से कहा,
क्या तुम इस स्त्री को देख रहे हो? मैं तुम्हारे घर में आया और तुमने मेरे पैरों को धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इसने मेरे पैरों को अपने आंसुओं से धोया और अपने बालों से पोंछा। तुमने मुझे चूमा नहीं, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ ये मेरे पैरों को चूमती जा रही है। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं उंडेला, लेकिन इस महिला ने मेरे पैरों पर खुशबूदार तेल उंडेल दिया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके बहुत से अपराध माफ किए जा चुके हैं, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है, लेकिन जिसका थोड़ा माफ किया गया है वो कम प्रेम करता है।
यीशु ने स्त्री से कहा,
तुम्हारे अपराध माफ हो चुके हैं।
यीशु के साथ खाना खाने वाले दूसरे लोग आपस में कहने लगे,
ये कौन है जो अपराधों को भी माफ कर सकता है?
यीशु ने स्त्री से कहा,
तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है, खुशी खुशी जाओ।